नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनकम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, हमेशा मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप सुंदर सुंदर पंक्तियां जरूर हम तक पहुंचाते रहा कीजिए। आपके सुंदर विचार जब यहाँ आते हैं तो सचमुच पूरे ही समाधान परिवार तक पहुंच जाते हैं, विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। आकांक्षा ने कोलकाता से हमें एक सुंदर सा मैसेज भेजा है। मैसेज क्या है ये, इन्होंने भगवान की प्रतिज्ञा हमें भेजी है। बड़ा ही सुंदर लगा मुझे कि भगवान भी हमसे कुछ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें संसार में भेज रहा हूँ, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। सुंदर पंक्तियां मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान कहते हैं कि मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना, मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। भगवान कहते हैं मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझमें ना भर दूं तो कहना, मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुमसे सबकी गुलामी न छुड़ा दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना। और भगवान ये भी कहते हैं कि मेरे मार्ग पर निकल के तो देख, तुझे मैं मशहूर ना बना दूं तो कहना, तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ना, दिल को कितनी राहत देती हैं, आराम देती हैं, तसल्ली देती हैं। और भगवान यदि ये हम सबके लिए करते हैं तो सचमुच हमें भी कुछ उनके लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसे सुंदर प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। और ब्रदर जी से ये भी जानते हैं कि उन्होंने तो हमसे प्रतिज्ञा की है, हम उनके लिए क्या करें या हम उनसे क्या प्रतिज्ञा करें। पहले उनका स्वागत करते हैं। ब्रदर जी, बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक्स।
बड़ा प्यारा लगा ब्रदर जी कि भगवान, अब तक मनुष्य मनुष्य से प्रतिज्ञा करता था ऐसा सुना था, लेकिन भगवान भी हमसे कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, ये पहली बार सुना।
बहुत प्यार करता है ना वो हमसे, क्या है, भक्त लोग या तो केवल उसकी प्रेयर करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, परंतु किसी को भी ये पता नहीं कि वो तो हमारा है और वो भी हमें बहुत प्यार करता है। वो सदा हमें सुखी देखना चाहता है, वो तो चाहता है। आप अपने बच्चों के लिए देखो क्या क्या चाहता है, मेरा हर बच्चा बड़े से बड़ी पोस्ट पे हो, सबसे अधिक धनवान मेरा ही हो, संसार में बस मेरे ही बच्चे चमकते हो, बाकी किसी के नहीं। भगवान भी हमारा परम पिता है
जी,
वो भी चाहता है मेरा हर बच्चा सुखी हो, हर बच्चा मेरा नाम रोशन करे, हर बच्चा इस विश्व गगन में चमकता रहे, हर बच्चा इतना योग्य हो कि वो सारे संसार को देने के लायक हो जाए। सचमुच उसकी भावनाओं को समझना ये भी सद्विवेक की बात है
जी। तो बताते जी, ये सारी बातें जो कही हैं परमात्मा ने कि भाई मेरे मार्ग पे पैर रख, या साथ ही साथ मेरे लिए मनन करके देख, आंसू बहा के देख, या मेरे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा के देख, तो ये वाली जो बात है कि परमात्मा ये हमें कहते हैं कि ये तुम करके देखो तो ये सारी चीजें होंगे, तो कई बार व्यक्ति ये सारी चीजें इस ओर बढ़ नहीं पाता है या इन चीजों का चिंतन नहीं कर पाता, हो सकता है कि अपनी व्यस्तता के कारण ऐसा करता हो।
इस समय को ये विशेष वरदान मिला है
जी, जी।
वर्तमान समय खास, अब से पहले भगवान की खोज रही
जी।
हम उसके बारे में शास्त्र ग्रंथ वेदों में दर्शनों में उसे ढूंढते रहे, या उसके लिए कभी अमरनाथ जा रहे, कभी बद्रीनाथ, भिन्न भिन्न तरीके हम सभी ने अपनाए उसके लिए, लेकिन अब वो समय आ गया है जब वो खुद हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित है, हमें सद्ज्ञान दे रहा है और हमें एक मार्ग दिखा रहा है कि तुम इस संसार के दुखों से मुक्त होकर मुक्ति को कैसे प्राप्त करो, या इस जीवन में भी संपूर्ण सुखी कैसे हो जाओ, सफल कैसे हो जाओ। तो ये सब चीजें उससे जुड़ी हैं। भगवान जो ज्ञान दे रहा है वो यदि हम दूसरों को देंगे तो हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, हम भी जैसे कि सागर बन जाएंगे ज्ञान के, हमारी बुद्धि भी बहुत दिव्य विवेक से भरपूर हो जाएगी। मुझे तो लास्ट बात बहुत अच्छी लगी थी, तू मेरा बन के तो देख, सबको तेरा न बना दूं तो कहना। सचमुच कितनी सुंदर बात है, आजकल तो अपने भी अपने नहीं है, अपने अपनों के शत्रु बन गए हैं, कई लोगों का तो ऐसा हो गया कि वो संसार में अकेले हो गए हैं
जी, जी।
परिवार भरा हुआ है लेकिन वो अकेले हैं। तो भगवान ने ये बहुत अच्छी बात कह दी हमें, उसकी प्रतिज्ञा कह लो या ये एक सीक्रेट समझा दिया, तो मेरे हो जाओ तो मैं सृष्टि का बीज, तो सारी सृष्टि तुमको प्यार करेगी।
तो व्रता जी चलिए लास्ट लाइन ही, वैसे तो हर एक पंक्ति पे बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है, विचार किया जा सकता है और आपसे प्रकाश लिया जा सकता है, लेकिन मेरा बन जाओ से हम क्या समझें? क्या वो सब कुछ छोड़ करके हम भगवान के पास आ जाएं, श्वेत वस्त्र धारण कर लें, गेरुए वस्त्र धारण कर लें, या वहां रहते हुए भी कुछ उनका बन के किया जा सकता
है? इसमें बहुत सुंदर रहस्य है। देखिए, ये मन उसकी केवल कॉन्शियसनेस, उसकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। एक व्यक्ति धन के पीछे दौड़ रहा है तो कहा जाएगा धन का हो गया है। एक व्यक्ति किसी कार्य में बहुत तल्लीन है, उसे न खाने की फुर्सत, न सोचने की, न सोने की, इस काम का हो गया है ये तो व्यक्ति। ऐसे ही लोग विषय विकारों में रत हो गए तो भगवान की वाणी है ये माया के हो गए हैं। और अब बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, मेरे हो जाओ, माना जो मैं कहता हूँ उसको फॉलो करे, पवित्र बनो, मेरे से अपना नाता जोड़ लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मेरे बच्चे हो, इस फीलिंग में आ जाओ, इसको कहते हैं मैं भगवान का हो जाना। तो इसके लिए कुछ छोड़ने की बात नहीं, कुछ विशेष वस्त्र पहनने की बात नहीं, ये एक अवेयरनेस है, ये एक हायर कॉन्शियसनेस है। इसमें इस तरह से हम भगवान के हो जाएं तो आगे बहुत अच्छी फीलिंग्स होंगी कि वो हमारा और उसका सब कुछ हमारा, बहुत बड़ी चीज होगी। और इससे भी आगे की बात है कि उस पर हमारा अधिकार, प्यार भी और अधिकार भी, क्योंकि वो हमारा हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। इस प्रतिज्ञा में सारी बातें चर्चा करने योग्य हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे भी, लेकिन अगर हम भगवान के बन जाते हैं तो जैसे मैंने कहा, वो बीज है सृष्टि का। मुझे अपनी एक सुंदर अनुभव की बात याद आ गई। बिल्कुल प्रारंभ में जब मैं यज्ञ में समर्पित होकर आया तो मुझे सेवा दी गई भोजन बनाने की। माताएं भोजन बनाती थी, मेरे को भोजन बनाना नहीं आता था, मुझे मदद करनी थी। फिर माताएं चली गई, अब मुझे कहा तुम ही बनाना सीख लो, बनाया करो भाई। अब मैं तो भाई भोजन आदि के बारे में खाना तो जानता था, बनाना तो नहीं, तो चलो ईश्वरीय सेवा है तो सीखने लगे। अभी सीखने लगे तो आ गया, अब मैं रह गया अकेला। 100 लोगों का भोजन 150 लोगों का भोजन अकेला, कई कई चीजें बनानी है, ये नहीं सब्जी बना दी और चलो काम उतर गया। तो तब बाबा के महावाक्यों में ये सुंदर बात आई कि जो कल्प वृक्ष का बीज है परमात्मा, उसे यदि तुम स्नेह का पानी दोगे तो सारे जो पत्ते हैं और जो फल हैं वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा रिटर्न में। जैसे पेड़ को पानी देने से फल फूल लग जाते हैं ना
जी,
तो स्नेह का पानी दोगे तो सहयोग प्राप्त हो जाएगा एक एक पत्ते का, एक एक फल का
जी।
तो मुझे ये बात बहुत डीप थी और समझ में आ गई कि मैं सोचता था ना कोई मदद करने आए, मुझे कोई जा रहा उसको कहता था भाई ये काम जरा मदद कर दो, कोई भारी चीज उठानी भाई आओ तुम जरा मदद कर दो, मैं सोचा यार ये तो अच्छा नहीं है। शुक्ल वृक्ष का बीज है परमात्मा, सर्वशक्तिमान, उसको स्नेह का पानी दो, माना उससे योगयुक्त हो जाओ, उसे अपना बना लो, उसे प्यार करो, तो ये स्नेह उसको जाने लगेगा। तो मैंने ये प्रारंभ किया और फिर मैं संकल्प करता था कि आज मुझे 2 लोगों की मदद चाहिए, तो कोई ना कोई आके मदद करने लगा। तो एक बहुत सुंदर अनुभव, एक नया चैप्टर प्रारंभ हुआ कि योगयुक्त होने से कैसे सबका सहयोग मिलता है। तो समझ में आ गया कि कल्प वृक्ष का जो बीज रूप परमात्मा है उससे यदि हम जुड़ जाएं तो सारा कल्प वृक्ष हमसे जुड़ जाता है। तो यही बात यहाँ आई कि तू मेरा बन जा, मेरे से बुद्धि योग लगा तो ये सारा संसार ही तुम्हारा हो जाएगा, कोई भी तुम्हें नफरत नहीं करेगा, कोई तुम्हें असहयोग नहीं करेगा, कोई तुम्हारे मार्ग में बाधाएं नहीं डालेगा, सब तुम्हारे सहयोगी, सब तुम्हें प्यार करने वाले, सब तुम्हें सम्मान देने वाले हो जाएंगे। तो ये बड़े सीक्रेट हैं, ये इसको परमात्मा की प्रतिज्ञा कह लो या सीक्रेट्स कह लो, ये बहुत अच्छी चीज है।
एक चीज इसमें आती है, जब हम परमात्मा को अर्पित होना चाहते हैं या उसके होना चाहते हैं तो एक भाव आता है लोगों के मन में कि वो है कौन, कैसा उसका स्वरूप है, कैसे उससे नाता जोड़ें या किसे अर्पित करें, अर्पित करने का स्वरूप क्या हो, ये तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं। कई अपने गुरुओं को ईश्वर के रूप में मानते हैं, कि प्रकृति को ईश्वर के रूप में मानते हैं कि श्री कृष्ण जी को मानते हैं, तो यहाँ थोड़ा विरोधाभास पैदा
होता है। बिल्कुल, ये सुंदर प्रश्न है और लोगों के मन में ये रहता है और कईयों को समझ में नहीं आता कि कहाँ करें हम समर्पित, कहाँ दे अपना सब कुछ,
उसका स्वरूप क्या है।
तो कईयों ने क्या किया भक्ति काल में कि अपनी धन संपदा धर्म के कार्य में लगा दी, भाई हमने परमात्मा अर्थ सब कुछ लगा दिया। किसी ने श्री कृष्ण अर्थ लगा दिया, मान लो श्री कृष्ण के मंदिर बनवा दिए या जहाँ श्री कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, पंडित पुजारियों को बहुत कुछ दे दिया, हाँ भाई तुम अब इसको संभालो, तो वो कहते हैं हमने श्री कृष्ण अर्पणम कर दिया। तो ऐसे लोग करते आए, परंतु ये सत्य बात है जैसे आपने कहा गुरुओं के लिए भी लोग करते रहे, गुरुओं को बहुत कुछ दे दिया, चलो भाई ये भी प्रभु अर्पण हुआ, ठीक है ये बात भक्ति में ये सब चलती रही। लेकिन जब भगवान इस धरा पर स्वयं आ जाए और वो एक कार्य प्रारंभ कर दे युग परिवर्तन का, अब उसने यही किया है, वो अवतरित हुए और एक विशाल रुद्र यज्ञ रचा जिसको ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। ये एक विशाल कार्य है जिसका हेड ऑफिस माउंट आबू है और उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ये रुद्र यज्ञ है। अब इस रुद्र यज्ञ के द्वारा वो युग परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल में मनुष्यों को व्यसनों से छुड़ाया जा रहा है, मनुष्यों की सेवाएं की जा रही हैं ताकि उनमें मॉरल वैल्यूज आए, उनका खोया हुआ चरित्र वापिस आए, उनकी शक्तियां जो नष्ट हो गई वो पुनः उसे गेन कर सकें। तो ये सब कार्य चल रहा है मानवता की सेवा का। और जब अनेक मनुष्य परिवर्तित हो जाएंगे तो युग बदल जाएगा। तो ये भगवान अब स्वयं आके कार्य कर रहे हैं, तो अपना सब कुछ तन मन धन उसके कार्यों में लगा देना, ये उसको अपनाना, उस पर समर्पित हो जाना, अपना सर्वस्व उसमें लगाना। जैसे आप सब देख रहे हैं हमारे इस कार्य में 15,000 बहनें, उसमें सब यंग हैं, जो यंग आई थी वो बुजुर्ग हो गई, बाकी यंग बहनें, उन्हें देख के लोग सोचते हैं कि ये यंग कन्या है, इन्होंने ब्रह्मचर्य अपना लिया, ये इस कार्य में लग गई। और उन्हें सब देखते हैं बड़ी एक्टिव और भिन्न भिन्न कार्य कर रही हैं, ऐसा नहीं कि वो निराश हैं, उनके चेहरे पे कुछ दूसरे तरह के हाव भाव हैं। तो हम लोगों ने भी अपना जीवन प्रभु अर्पण कर दिया। अब अंतर केवल इतना रह गया कि भक्ति काल में, भक्ति मार्ग में हम इनडायरेक्ट परमात्मा को अर्पण कर रहे थे और अब डायरेक्ट हो गया, वो हमारे सम्मुख है, हमने उसको अर्पित कर दिया और साथ ही साथ रिटर्न में उससे बहुत कुछ मिल गया है।
बस एक चीज मन में प्रश्न के रूप में आता है प्रता जी कि ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा है, मैं इस भाव को कैसे मानूं? संभव है कि कई और स्थान ऐसे हैं वहां पे भी ये कहा जाता है कि यहाँ परमात्मा है, यहाँ परमात्मा अर्थ अर्पण करें। अब आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा है, यहाँ अर्पण करें, तो इस दुविधा को कैसे दूर किया?
देखिए कहीं भी मान लो गुरु के पास भी लोग अर्पण करते हैं जी, जी। और वो उसका सदुपयोग करते हैं अच्छे कार्यों में, कुछ लोगों को भूखों को भोजन खिलाते हैं, दवाइयां बंटवाते हैं, स्कूल खोलते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं, तो वो भी उनका प्रभु अर्थ ही माना जाएगा। जैसे मैंने कहा मंदिरों में करते हैं वो भी प्रभु अर्थ ही माना जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पर आया है ब्रह्मा कुमारी में, ये तो हम खुले रूप से कह रहे हैं और लोग इसको आके रियलाइज कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। ये दिखाने की चीज तो नहीं ना, मंदिर में तो हम दिखा देते हैं भाई ये श्री कृष्ण की प्रतिमा बनी है, इसको स्थापित किया जाएगा, ये इस तरह का मंदिर होगा, इस तरह का कार्य यहाँ से चलेगा। लेकिन परमात्मा जो निराकार है उसको तो आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हमें ये जानना चाहिए, कुछ मापदंड है उसके कार्य को पहचानने के लिए। जहां मनुष्य को पवित्र बनाया जा रहा हो समझ लें वो परमात्म कार्य है, जहां मनुष्य को परमात्मा से मिलने का सहज मार्ग दिखाया जा रहा हो, लंबा चौड़ा मार्ग नहीं, तुरंत बस उस चीज को फॉलो करो और प्रभु मिलन हो, समझ लो परमात्म कार्य चल रहा है। जहां अपने लिए लोग सब कुछ न कर रहे हो, सब कुछ परमात्म अर्थ किया जा रहा हो। अब आप देख लीजिए सिंपल सी बात है, संसार में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जहां इतने लोगों ने अपने लाइफ को डेडिकेट करके ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली हो। ये एक अनुपम चीज है, ये अलौकिक चीज है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के करोड़ों मेंबर्स हो सकते हैं, दैट्स गुड, लेकिन वो सब इस तरह से डेडिकेटेड हों वो नहीं। देखिए लोगों को धन कमाने की इच्छा होगी, लोगों को होगा कि एमएलए तो बन जाऊं, कम से कम एक बार तो जीवन में बन जाऊं तो इस पार्टी में आना मेरा सफल हो जाएगा। अच्छा ये नहीं बना रहे, दूसरे बना रहे तो छोड़ के उसमें चले गए। यहाँ आप देखेंगे किसी को कोई पद पोजीशन की चिंता ही नहीं, संकल्प ही नहीं, धन इकट्ठा करने की बात ही नहीं, क्योंकि सबने अपना ही सब कुछ दे दिया है। तो सेवा भाव और उनके चेहरे पर तेज चमकते हुए चेहरे, चेहरे की मुस्कान, ये इस बात के द्योतक हैं कि ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं, ये परमात्मा कार्य है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर सब कुछ लगा देना माना डायरेक्ट परमात्मा को अर्पित कर देना।
जी जी, मतलब एक बार सचमुच ये चीजें आके व्यक्ति को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और साथ ही फिर अपना निर्णय लेना चाहिए। जैसे आपने कहा बहुत ही सुंदर एक प्रेरक बात है कि पवित्रता तो संसार में सचमुच जिसकी कोई चीज दिखाई नहीं देती है वो चीज यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें दिखाई देती
है। मैं और जोर देना चाहूंगा, हमारे यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, अब भी देखिए शिविर चल रहा है, आज उसका लास्ट दिन है, गुजरात के 5000 लोग उसमें शामिल हुए हैं। पीछे शिविर बीत गया, साउथ इंडिया के ऐसे ही 5000 लोग उसमें शामिल हुए। जिससे भी बात करो सब एक चीज अनुभव करते हैं, यहाँ बहुत मेरे से मिलते हैं और मैं उनसे कुछ पूछता हूँ कैसा लगा, क्या सीखा, कौन सी बात आपको अपील की है, क्या करना चाहोगे भविष्य में। तो मुझे बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स अनेकों की तरफ से मिलता है कि यहाँ आकर हमारी सत्य की खोज पूर्ण हो गई। हम ढूंढ ही रहे थे मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, आखिर वो है कहाँ, क्या करता है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए इस संसार में, ये क्यों रच दिया भगवान ने। हम यहाँ 3 दिन आए, 3 दिन में हमने कितनी क्लासेज हुई, 3 दिन में कम से कम 12-14-15 क्लासेज हो जाती हैं, 15 हो जाती है 5 रोज
जी।
का इतना ज्ञान मिल गया कि वो सब जो क्वेश्चंस थे ना मन में वो शांत हो गया, लगता है दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो एक सत्य को प्राप्त कर लिया, ये परमात्मा कार्य की बहुत बड़ी पहचान है। नहीं तो सबके अनुभव हैं, हमारे भी थे, सारे वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, 6 दर्शन पढ़ लिए, गीता रामायण महाभारत सब पढ़ ली, स्टिल अंदर से आवाज आ रही है सत्य कुछ और भी है। और यहाँ आते ही वो सब शांत हो गया। तो क्योंकि परमात्मा संपूर्ण सत्य है और वही सत्य ज्ञान देते हैं, उसके अलावा जो भी ज्ञान है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाते हैं, कहीं ना कहीं बात बस अधूरी सी रह जाती है कि एक चीज और होती तो बात परफेक्ट हो जाती। और ये ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद संपूर्णता में नजर आती है। तो ये ईश्वरीय कार्य की बहुत बड़ी पहचान है।
मतलब सत्य की कितनी तलाश थी मनुष्य को कि सत्य है क्या, है क्या, है क्या, और यहाँ आके सहज रूप से शायद उस चीज को अनुभव कर लेता है, पा लेता है। और अंदर की तृप्ति मुझे लगता है ब्रह्मा जी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अंदर यदि तृप्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति भटकता ही रहता है।
भटकता है, वो अनेक क्वेश्चंस करता है
जी।
हम लोगों से भी लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम ये कहते हो, वेद तो ये कहते हैं, तुम ये कहते हो, दर्शनों में तो ये लिखा है, बहुत क्वेश्चंस करते रहते हैं, उलझे रहते हैं। हमारे उत्तर देने के बाद भी दे आर नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अंदर से उनकी चेतना जागृत हो रही है और सत्य की रियलाइजेशन होने के बाद उनके सभी क्वेश्चन शांत हो रहे हैं। वो सोचते हैं पूछे क्या अब, तो सब हो गया।
ये सबसे अच्छी
ये हमें भी लगता
कि
है
प्रश्न ही समाप्त हो गया।
हमें भी लगता है कि देखिए ये सचमुच प्रभु कृपा ही है, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान ही है कि लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं, कहा बस स्वीकार कर रहे हैं यही सत्य है। हमें भी लगता है कि ये सचमुच एक समय का प्रभाव है जो सत्य को लोग इस तरह स्वीकार कर रहे हैं।
जी जी, तो व्यक्तिगत रूप से क्या सजेस्ट करेंगे बेहतर जी कि लोग जो सत्य के बहुत ज्यादा तलाश में हैं कि सत्य क्या है, या हम भी अपने जीवन में एक स्थिरता ले आएं, उस परम शांति या आनंद की ओर बढ़ें, सत्य को जान लें, समझ लें, क्या उन्हें माउंट आबू एक बार आना चाहिए या जो सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारी के वहां जाके भी ऐसी ही अनुभूति कर सकते हैं।
बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। सचमुच संसार में आज भी कम से कम लाखों लोग तो ऐसे हैं, करोड़ों ना भी कहूं, लाखों लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अंतर मन से सत्य की खोज में हैं। भले वो बिजनेस में बिजी हैं, कोई प्रोफेसर है पढ़ा रहा है, कोई स्टूडेंट है, लेकिन उनको लगता है कि संपूर्ण सत्य को जानना चाहिए। जीवन का ये भी एक लक्ष्य है कि संपूर्ण सत्य को हम जान लें। देखिए, विज्ञान प्रकृति की खोज कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि वो प्रकृति की अंश मात्र खोज कर पाए हैं, अंश मात्र से भी चमत्कार कर दिया उन्होंने संसार में।
जी, जी।
एटम बॉम्ब्स बना दिए, और चलो वो तो युद्ध की चीजें हैं, घर घर में सुख सुविधाएं पहुंचा दी हैं। प्रकृति को यदि विज्ञान संपूर्ण रूप से जान ले तो क्या कमाल हो जाए। और यदि संपूर्ण सत्य परमात्मा के बारे में, स्वयं के बारे में मनुष्य को पता चल जाए तो सचमुच उसका जीवन डिवाइन हो जाए। उसे लगेगा कि और कुछ पाना शेष रहा ही नहीं। तो मैं कहूंगा अपने सभी उन भाई बहनों को जो सत्य की खोज करते आए हैं, जिनकी बुद्धि में, मन में, कहीं किसी कोने में ये छुपा है कि सत्य को हम जान ले, वो आइए, उन सबका वेलकम है। मैं बात ब्रह्मा कुमारी की नहीं कर रहा हूँ, स्वयं भगवान ने अपने सारे रहस्य खोले हैं, जो ज्ञान का सागर है उसने संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश हम सबको दिया है। वो हमारी बहनें सेवा केंद्रों पर भी दे रही हैं, और मुख्यालय में तो वो विशाल रूप से दिया जा रहा है हमारे यहाँ। मुख्यालय में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ, क्योंकि बहुत सारे राजयोगी तपस्या करते हैं, तो यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत ही पवित्र हैं, बहुत अलौकिक हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। शहरों में क्या होता है, हमारी दो तीन बहनें होंगी या आने वाले होंगे 100, 200, 500, लेकिन सब बाहर से आते हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस अलग होते हैं। चारों ओर भी तो कलयुग का वातावरण है, लेकिन हमारे माउंट आबू में जो व्यक्ति यहाँ आता है वो महसूस करता है कि ये संसार तो अलग ही संसार है।
जी जी।
क्या संसार में कहीं ऐसा भी होता है क्या, लोग की आंखें खुली रह जाते हैं? और वो छोटे मोटे लोग नहीं, वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं, कि अरे संसार में ऐसी जगह भी है क्या, हम तो खोज कर रहे थे ऐसी जगह। जो सत्य प्रेमी हैं, सत्य के प्रेमी, सत्य के खोजक हैं, अन्वेषक हैं, उन्हें कहूंगा कि आइए सेंटर्स पे भी हमारे जाइए, ज्ञान लीजिए, कोर्स कीजिए, एक बार माउंट आबू आकर देख तो लें सत्य क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस मार्ग पे चलने वालों का जीवन कैसा होता है, और कैसे युग बदल रहा है, कैसे अब आने वाले समय में प्रकृति भी बदलेगी, मनुष्य भी बदलेंगे। एक लहर इस वसुंधरा पर आने वाली है, मेरे सामने वो सब विजन है। एक स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन होगा और हर व्यक्ति स्पिरिचुअल बनेगा। इस मोह माया को, इस पाप और गंदगी को, इन विकारों और व्यसनों को फटाफट छोड़ेगा, और वो दिन बहुत सुनहरे दिन होंगे, और ये दिन आने ही वाले हैं।
मतलब अच्छे दिन आने वाले,
बहुत अच्छे।
इसका स्वर्णिम दिन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। पता जी, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सुंदर खाका आपने खींचा है कि ऐसा एक सुंदर रिवोल्यूशन होने वाला है और पूरी सृष्टि बदलने वाली है, सत्य आएगा और सभी लोग सुखी होंगे। एक बात विशेष, व्रता जी, आज समय इजाजत नहीं दे रहा है, वैसे चर्चा बहुत लंबी होगी। लोगों के अंदर, कईयों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ब्रह्मा कुमारीज क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। भ्रम की स्थिति के कारण वो दूर दूर रहते हैं कि वो शायद जादू कर देती हैं, या यहाँ ये होता है, वो होता है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे संक्षेप में?
देखिए, जादू वादू तो बहुत छोटी चीज है, ये तो वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ देने को नहीं है दूसरों के। यहाँ तो स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता है, यहाँ तो मनुष्य को डिवाइन बनाया जाता है, उस के जीवन को प्योरीफाई किया जाता है। तो मैं तो कहूंगा, जैसे हिंदी में कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अरे भाई आके देख लो। भ्रम में क्यों रहते हो, अकेले आते हुए डरते हो, परिवार सहित आ जाओ, 10-20 लोगों के साथ आ जाए, हम आपको कुछ कर न दें, पावरफुल लोगों के साथ आ जाओ, बॉडीगार्ड के साथ आ जाओ, देखो आकर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या जीवन है। और तब आप ही आप समझ जाएंगे हम सोचते क्या थे और हो क्या गया। मैं तो एक ही अनुभव सुनाऊंगा। हमारे पास एक बहुत वेल एजुकेटेड व्यक्ति आए, कहा अच्छी पोस्ट पर थे, कहा अरे ये बहनें 10 साल से मुझे कहती रहती थी भाई जी चलो चलो, मैं कहता था ऐसे मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे नहीं जाना है, ये क्यों मुझे बार बार कह रही हैं, 10-12 साल हो गए। आखिर जब ये बहुत आग्रह करने लगी, मेरे एक फ्रेंड ने भी कहा, मैं भी होके आया हूँ, बहुत अच्छा है, जाके तो देखो। मैं आ गया, अब यहाँ आके लग रहा, अरे 12 साल मैंने वेस्ट कर दिए, काश मुझे सद्बुद्धि मिली होती, मैं पहले ही दिन आ जाता, यहाँ ये है, नहीं तो आंखें खुल गई हैं। तो ये सत्य है कि मनुष्य देखकर बहुत कुछ समझ सकता है। आइए और सत्य क्या है उसको पहचानिए।
बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी आपका खुले दिल से आह्वान करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। हम तो चाहेंगे कि सभी एक बार जरूर माउंट आबू भी आएं, सेवा केंद्रों पे भी जाएं और वहां सत्य को पाकर अपने जीवन को आनंदित करें, सफल करें। आज के सुंदर ज्ञान युक्त प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कितनी सुंदर चर्चा रही है आज की। भगवान की प्रतिज्ञा से शुरुआत हुई, वो हमारे लिए क्या क्या करना चाहते हैं। सचमुच एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं ना, केवल वो इतना चाहते हैं कि हम एक कदम उनकी ओर बढ़ाएं और ये कदम मन से हो, श्रद्धा से हो, विश्वास से हो, तो सचमुच जीवन आनंद से, शक्ति से, शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। जिन चीजों की हम तलाश कर रहे हैं बाहर, वो सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी यदि सचमुच दिल से हम उनकी ओर एक कदम बढ़ाएं। क्योंकि जब हमारे पिता सर्वशक्तियों के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, तो हम शांति से मुक्त क्यों हैं? अर्थात हम क्यों अशांत हैं, क्यों आनंद के लिए भटक रहे हैं? पिता से यदि हम जुड़ जाते हैं या वो जैसा करने को कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं, ये सारी संपत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। इस पर बहुत गहराई से आज के इस एपिसोड से हम सबको विचार जरूर करना है। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि उनके दर पे सुकून मिलता है, उनकी इबादत से नूर मिलता है, जो झुक जाता है उनके सजदे में उसे जो चाहा वो सब मिलता है। केवल हमें झुकने की आवश्यकता है, प्यार से उसकी ओर देखने की आवश्यकता है, तो हम जो चाहते हैं अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी हमारे लिए ऐसा नहीं होगा जो असंभव हो। तो आपका जीवन सुख से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो, वो सागर जो हमारे पिता हैं वो अपना सब कुछ आप पे लुटाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये।